મહાબંધ પુસ્તક પાંચમી લેક્ચર નંબર 10. ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય, ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ. નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયર્યાણં, નમો વજ્જાયાણં, નમો લોયે સૌવસાહુણં. ભૂતબલી પ્રણીતં તં બંધતત્વ પ્રકાશકં મહાધવલ વિખ્યાતં મહાબંધમ નમામ્યહમ. આચાર્ય શ્રી ભૂતબલી ભટ્ટારક પ્રણીત એ મહાબંધ નામ કા સિદ્ધાંત શાસ્ત્ર હૈ, જો ષટખંડાગમ કા 6 નંબર કા ખંડ હૈ. ઇસમેં તૃતીય અનુભાગ બંધ અધિકાર કો દેખતે હુએ પાંચમી પુસ્તક કે પૃષ્ઠ સંખ્યા 40 પર હમ આગે 40. યહાં અભી બંધ સન્નિકર્ષ કે પ્રકરણ મેં જઘન્ય અનુભાગ બંધ કા સન્નિકર્ષ હમ દેખ રહે હૈ ઉત્તર પ્રકૃતિઓ મેં, ઓર યહાં ઓઘ મેં દેખને કે બાદ કલ સે હમને નારકીઓ મેં દેખના પ્રારંભ કિયા થા. વહાં તો જ્ઞાનાવરણ કા તો સમજ સકતે હૈ, ઓર અંતરાય કા ભી એક કા હૈ તો અન્ય કા ભી જઘન્ય અજઘન્ય દોનો હોગે. એક બાત, દર્શનાવરણ મેં દો વિકલ્પ હૈ, ક્યુંકિ જહાં 9 બનતી હૈ ઓર જહાં 6 બનતી હૈ. સમ્ય દૃષ્ટિ કો 6 બનતી હૈ ઓર મિથ્યા દૃષ્ટિ કો 9 બનતી હૈ, તો સમ્યક તો કે સન્મુખ મેં સ્થાન વૃદ્ધિ કા જઘન્ય હોગા, તો વહાં અન્ય 2 કા સ્થાન નિદ્રા નિદ્રા પછલા પછલા જઘન્ય ભી ઓર અજઘન્ય હોગા, ઓર બાકી કા અનંત ગુણા અધિક હોગા, ક્યુંકિ બાકી 6 કા જઘન્ય કહાં હોગા, સમ્ય દૃષ્ટિ કે હોગા. યે દર્શનાવરણ કા હુઆ. બાકી આયુ એક બનતી હૈ, વેદની એક બનતી હૈ, ગોત્ર એક બન. બાત રહી મોહનીય કી ઓર નામકર્મ કે. મોહનીય મેં કૈસા લેના હૈ, મિથ્યાત્વ કા જઘન્ય ઓર અનંતાનુબંધી કા જઘન્ય, સમ્યક તો કે સન્મુખ વાલે કે હોગા. ઉનમેં આપસમાં એક કા જઘન્ય તો દૂસરા જઘન્ય અજઘન્ય દોનો હો ગયા, ઓર જહાં અજઘન્ય વહાં ષટ સ્થાન પતિત હો ગયા. વહાં ઓર ક્યા ક્યા બંધેગા વહાં પર? નિયમ સે બંધેગી, ક્યુંકિ 12 કષાય, પુરુષ વેદ, હાસ્યરતી, ભય જુગુપ્સા, નિયમ સે બંધેગે. પણ યે સમ્ય દૃષ્ટિ કે ભી બનતી હૈ તો વહાં વો જઘન્ય હોગી, ઓર યહાં પર યને મિથ્યા દૃષ્ટિ હૈ કર્ણલબ્ધિ મેં, યહાં વો અનંત ગુણાધિક હોગા. યે ઉસકી બાત હો ગઈ. ફિર સ્ત્રી વેદ કા જો જઘન્ય કરતા હૈ વો કબ કરતા હૈ? તો પ્રાયોગિક લબ્ધિ વાલા જો સ્થાન હૈ વહાં પર ઉસકા જઘન્ય હોગા. વહાં બાકી પ્રકૃતિયા કૈસી બંધેગી? અનંત ગુણાધિક. ઇવન મિથ્યાત્વ ભી, ક્યુંકિ મિથ્યાત્વ કા જઘન્ય કહાં હૈ? કરણ લબ્ધિ કે અંતિમ સમય મેં, ઓર યહાં કૌન સા હૈ? પ્રાયોગિક લબ્ધિ કા સ્થાન હૈ, તો વહાં વો અનંત ગુણા બંધેગા. હા, શ્રીવેદ કે જઘન્ય કે સાથ દોનો કા, ક્યુંકિ દોનો કા હી જઘન્ય કહાં હૈ? સમય દૃષ્ટિ કો, ઓર રતિશોક કા ભી ઓર હાસ્ય રતિ કા ભી, ઓર યહાં વો દોનો હી બન સકતે, ક્યુંકિ ઉસકી ઉસકા જઘન્ય અપના કહાં હૈ? ઉસકા અપના હાસ્યરતી ઓર અરતિશોક કા જઘન્ય કહાં હૈ? તો સમય દૃષ્ટિ કો હૈ, તો વો યહાં કૈસે બંધેગી? અનંત ગુણાધિક બંધેગી. બિલકુલ બંધેગી, ક્યુ નહીં બંધેગી? ક્યુંકિ એસા ભી અરતિશોક કા અગર સમ્યક તો કે 34વે નંબર પર ઉસકી બંધી વિચિત્તિ હોતી હૈ, પણ વો બાદ મેં ફિર દુબારા બનતી હૈ. તો યહાં આપી બતાવો, બંધેગી કે નહીં બંધે? ક્યો નહીં બંધે? ક્યો બંધેગી? ઉસકી ઇતિથી તો કહેંગી સમય દૃષ્ટિ કો ભી બનતી હૈ, વો 34વે નંબર બંધાપસરણ હુઆ થા, વો ઉતને ઉપશમ કે કાલ મેં હુઆ થા. એને વો તો જબ વો કરણ લબ્ધિ મેં થા તબ વો અંતિમ સમય મેં ઉસકો અંત મેં ઉસકા બંધાપસરણ હુઆ થા, બાદ મેં ફિર બનતા હૈ. इसलिए नीचे उसके पहले प्रायोगिक लब्धि के 30 नंबर के कहो या नपुसक वेद के जघन्य के साथ दोनों ही बंधेगी। हास्य रति और अरति शोक कदाचित बंधेगी, और वो बंधेगी तो अनंत गुणाधिक बंधेगी। और भैजू गुप्सा भी वो तो ध्रुवबंदी है, वो भी समय दृष्टि को जघन्य, यहां पर वो अनंत गुणाधिक बंधेगी। और जो समय दृष्टि को जो जघन्य बनती है, कौन सी 12 कषाय पुरुष वेद हास्य रति भजी, उनका आपस में ऐसा ही होगा, एक का जघन्य का तो अन्य का भी जघन्य होगा, अजघन्य होगा। ये मोहिनी की बात हो गई पूरी। अब नाम कर्म की बात हम देख रहे थे, नारकियों में देख रहे नाम कर्म की बात। 39 पेज पर नीचे का पैराग्राफ। अब तीरेंच गति और गत्यानुपुरी का जघन्य, ये सातवें नरक में लेना, क्योंकि यह सामान्य नारकियों में उसका जघन्य बांधने वाला कौन है, तो सातवें नरक का नारकी, उसका जघन्य हो रहा है तो वहां क्या क्या बंधेगी उसकी बात लेना है। यानी यहां बंधने वाली क्या, इनका केवल जघन्य हो, किसका, तीरेंच गति के साथ तीरेंच गत्यानुपुरी और नीच गोत्र का जघन्य हो सकता है, और बाकी प्रकृतियां कैसी बनेगी, प्रशस्त भी अनंत गुणाधिक, और अप्रशस्त जो समय दृष्टि को जघन्य बनती है वो भी अनंत गुणाधिक। ख्याल में आई बात, इसलिए ओक के समान कह दिया उन्होंने। अब बाकी जो है ना, मनुष्य गति देवगति वगैरह, देवगति यहां बनती नहीं, मनुष्य गति बनती है, हम ओघ में देख रहे थे। ये मनुष्य गति का जघन्य कहां होगा, मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम वाला, वो भी ओग के समान बताया। ओग के समान क्या है, यहां पर भी जो अति संकलेश में जो जघन्य बनती है, प्रशस्त पंचेंद्रिय जातीय औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग तेजस कारमान वगैरह, वो यह मध्यम परिणाम में कैसे बनेगी, अनंत गुणाधिक। और जो नारकी मनुष्य गति का जघन्य बन कर रहा है, उसके साथ जो अप्रशस्त वर्ण चतुष्क है, उपघात है, अन्य भी जो, वो कैसे बनेगी, अनंत गुणा। केवल इसके साथ कौन सी जघन्य अजघन्य बंधेगी, 6 संस्थान 6 सहनन है, 2 विहाय गति है, उनका भी मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, तो इसके साथ वो भी जघन्य बन सकती है। ये कैसे डिराइव करना है हमको ये देखना है। यानी अस्थिर आदि 6 वगैरह वो सब कैसे होगी, जघन्य भी और अजघन्य भी। परंतु वहां हमने क्या देखा था ओघ में, कि मनुष्य गति के साथ जघन्य के साथ पर्याप्त भी बन सकता है, अपर्याप्त भी बन सकता है, पर नारकी अपर्याप्त का बंध नहीं करता है, इसलिए उसको छोड़ना पड़ेगा। यानी इसमें जो यही पर्याप्त अपर्याप्त का विकल्प था ना, वो यहां लेना नहीं, केवल पर्याप्त को ही लेना है। और इसमें वो परघात उच्छ्वास वो नियम से बंधेगी कहेंगे, वहां कैसे कि कदाचित बंधेगी ऐसा लिखा था, यह नियम से बंधेगी, क्योंकि पर्याप्त के साथ वो नियम से बंधेगी। अब देखो पंचेंद्रिय जाति का जघन्य हो रहा है, करने वाले नारकी है यानी अति संकलेश वाले है, तो तीरेंज गति नियम से बांधेगी, उंड संस्थान, और ये कैसी प्रशस्त, ये अप्रशस्त प्रकृति है। पंचेंद्रिय जाति का जघन्य हो रहा है, ये अप्रशस्त का उत्कृष्ट होगा, यानी वो अजघन्य होगा, और कैसा होगा, अनंत गुणा अधिक होगा। ये सब लिस्ट दे दिए पूरी। अनंत गुणा अधिक 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 अनंत गुणा अधिक, समझ में ना बात। अस्थिर वगैरह 6 लेना यहाँ पर, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति का जघन्य हो रहा है, अति संकलेश परिणाम है, ऐसा लेना। अब औदारिक शरीर तेजस शरीर कारमन शरीर, पंचेंद्रिय जाति बन रही है और अति संकलेश है, तीरंज गति बन रहा है, तो औदारिक शरीर अंगोपांग तेजस कारमान प्रशस्त वर्ण चतुष ये जो सारी जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं त्रस चतुष निर्माण, वो नियम से बंधेगी, परंतु अति संकलेश है और ये प्रशस्त प्रकृतियां है, तो ये जगन्य अनुभाग का भी बंध होगा और अजगन्य का भी होगा। उद्योत में भी ऐसा ही समझना, वो कदाचित बंधेगी, और बंधेगी तो जगन्य भी और अजगन्य भी होगी। जहां जगन्य अजगन्य दोनों होते हैं वहां छह स्थान पतित होते हैं। 40 पेज पर आना, भी चार लाइन के बाद, यानी वो सारे प्रशस्त प्रकृति आपस में ऐसा ही समझना। अब कहते हैं ऊपर से 3, 3, 6, 2 आठवीं लाइन, छह संस्थान, छह सहनन, दो विहाय गति, छह युगल, छह युगल यानी स्थिर अस्थिर वगैरह। अभी तीर्थंकर को छोड़ो, इन सबका जगन्य कहाँ होता है? तो मध्यम परिणाम में, मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम वाला, तो वहां उसके साथ क्या बंधेगी? तो मनुष्य गति वगैरह बंधेगी। तो वो कैसे बंधेगी जो मध्यम परिणाम में बनती है? मनुष्य गति भी जगन्य अजगन्य बंधेगी, परंतु वो पंचेन अभी इसके साथ बनती है, ये मध्यम परिणाम है। पंचेन्द्रिय जाति औदारिक शरीर वगैरह कैसे बंधेगी? अनंत गुणादि, क्योंकि वो संकलेश में जगन्य। और बाकी उपघात अप्रशस्त वो कैसे बंधेगी? वो भी अनंत गुणादिक बंधेगी, अनंत गुणादिक बंधेगी, क्योंकि वो सातवें नरक की अपेक्षा आती है। इसलिए अगर सातवें नरक को छोड़ेंगे तो भी मध्यम परिणाम में जगन्य बंधेगी, तिर्यंच गति। यहाँ सातवें नरक की बात आती है, जहां जिस मार्गणा में, वहां तिर्यंच गति का जगन्य वहां लेना, मध्यम परिणाम में नहीं लेना। अब तीर्थंकर प्रकृति का भंग ओ के समान है। अब तीर्थंकर प्रकृति का जगन्य कहाँ बन रही है? वो जो मिथ्यात्व के सन्मुख वाला जो मनुष्य है और नरक में जाने वाला है, पर यहाँ उसको नहीं लेना है। यहाँ हम नरक मार्गना चल रही है, तो नारकी जो है चौथे गुण स्थान वाला, तो उसके संकलेश विशुद्ध प्रायोग संकलेश है ना। क्यों? क्योंकि सामान्य से अति संकलेश वाला चौथे वाला मिथ्यात्व के सन्मुख होता है। अब ये तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला नारकी कभी मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, इसलिए तत्प्रायग संकलेश वाला है। और यहाँ क्या बंधेगी? तो मनुष्य गति वगैरह बंधेगी, क्योंकि सम्य दृष्टि है ना, ये मनुष्य गति बंधेगी जिसका जघन्य मध्यम परिणाम में होता है और वो मिथ्या दृष्टि के होता है। यहाँ सम्य दृष्टि है, मनुष्य गति तो उत्कृष्ट बांध रहा है यहाँ पर, यानी उससे ज्यादा बांध रहा है, तो अनंत गुना। पंचेंद्रीय जाति वगैरह जो संकलेश में जगन्य होती है, वो भी यहाँ अनंत गुना। क्या 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 अनंत गुना इसलिए होगा क्योंकि तत्प्रायग संकलेश है और वो तो सर्व विशुद्धि में जगन्य होगा। देखो निकालो, ओघ में देखा या ओघ में तो बात अलग थी, क्योंकि वो तो मनुष्य उसका स्वामी था। हाँ, और वहां देवगति आदि बनती थी और यहां मनुष्य गति आदि बन रहे हैं। एक सेकंड है, मैं निकालती हूँ। थर्टी 38 में वो उत्कृष्ट में चली गई देखने को। हाँ, तीर्थंकर का था ना, वहां देवगति आदि लिया था, है ना। अब यहाँ क्या लेना है? मनुष्य गति आदि, क्योंकि बांधने वाला कौन है? नारकी। ये तीर्थंकर प्रकृति में ओक के समान बताया था, परंतु डिफरेंस कहाँ होगा कि मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस कारमान, समचतुर संस्थान, औदारिक अंगोपांग, प्रशस्त वर्ण अप्रशस्त, ये सब कैसे बंधेगी? हाँ, तो अनंत गुण अधिक बंधेगी। अभी आगे बढ़ी, यहाँ तक तो हमारा कल विषय हुआ था। अब कहते अप्रशस्त वर्ण के, जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ये अप्रशस्त वर्ण जो है अप्रशस्त प्रकृति है, तो सम्य दृष्टि सर्व विशुद्ध वाला होगा इसका स्वामी। तो अन्य अप्रशस्त जो प्रकृतियां है वो जघन्य या जघन्य बन देगी, और बाकी जो प्रकृतियां है प्रशस्त वो अनंत गुणा अधिक बन देगी। अब पढ़ेंगे हम इसको अप्रशस्त वर्ण के, अकेला वर्ण लिया, वर्ण चतुष्क नहीं लिया, अन्य तीन को अलग बताएंगे। अप्रशस्त वर्ण के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब ये समय दृष्टि है ना, तो नियम से क्या बांधेगा, मनुष्य गति बांधेगा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, तीन शरीर, औदारिक तेजस कारमान, समचतुर संस्थान, औदारिक अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, अगुरु लहुत्रिक, प्रशस्त व्याह गति, त्रस चतुष्क, स्थिरादि छ, और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। ये नियम से क्यों लिए, क्योंकि समय दृष्टि सर्व विशुद्ध है तो यही प्रकृतियां बंधेगी उसके। अप्रशस्त गंध त्रिक, ये वर्ण बताए ना, उसके साथ गंध रस और स्पर्श लेना, और उपघात का नियम से बंद करता है। इनका भी जघन्य का स्वामी वही है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियों का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, किंतु इनमें से किसी एक का बंद करने वाला जीव शेष का उसी प्रकार बंद करता है जिस प्रकार अप्रशस्त वर्ण की मुख्यता से कहे आए हैं। इसमें तीर्थंकर को नहीं लिया, कदाचित बंद करता है और वो अनंत गुणा अधिक होता है ना, तो समय दृष्टि है ना, इसका भी बंद कर सकता है। ऊपर की छह पृथ्वियों में तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का भंग के समान जानना चाहिए, मनुष्य गति के समान जानना चाहिए ना, मनुष्य गति का जघन्य मध्यम परिणाम में होता है, वैसा ही इनका भी मध्यम परिणाम में जघन्य होगा। तो उसके साथ वो छह संस्थान, छह सहनन, दो विया गति, छह युगल वगैरह जघन्य भी बन सकती है। अब सातवीं पृथ्वी में अलग से बताएंगे, तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का भंग ओघ के समान है, यह सामान्य नारकियों में भी हमें देखा, वैसा यहां पर भी होगा। मनुष्य गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब सातवीं पृथ्वी में क्या विशेषता है, हमने अन्य पृथ्वियों में क्या देखा था, मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम में वो जघन्य करता है, सातवीं पृथ्वी में मनुष्य गति का बंध समय दृष्टि करेगा। तो मनुष्य गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला है वो भी जघन्य, जघन्य कब होगा, संक्लेश में, संक्लेश में मिथ्यात्व के सन्मुख, यानी सम्य दृष्टि मिथ्यात्व के सन्मुख जो सातवें नरक वाला है वो मनुष्य गति का जघन्य करेगा। वहां पर पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, अब इनका सबका जघन्य कौन है, तो मिथ्या दृष्टि संक्लेश वाला करेगा, और ये सम्य दृष्टि है तो इनका सबका अनंत गुणा अधिक यहाँ होगा। समचतुर संस्थान, औदारिक अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, प्रशस्त विहाय गति, त्रस चतुष्क, अस्थिर अशुभ, देखो यहाँ पर समय दृष्टि है और सर्व संकलेश वाला है, इसलिए अस्थिर अशुभ और अयश कीर्ति लेना है। समय दृष्टि को तो दोनों ही बनती है स्थिर अस्थिर, पर यहाँ सम्यक्त में भी सर्व संकलिष्ट वाला है, तो इस पोजीशन में उसको अस्थिर अशुभ और अयश कीर्ति बंधेगी, पर समय दृष्टि इसलिए सुभग सुस्वर और आदेय ही बंधेगा, और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। तो मिथ्या दृष्टि सर्व संकलेश वाला जघन्य करेगा, यहाँ समय दृष्टि है तो अनंत गुणा अधिक करेगा। सातवें नरक में मनुष्य गति का बंध समय दृष्टि करता है, और उसका जघन्य कब कर रहा है, मिथ्यात्व के सन्मुख वाला है। पंचेंद्रिय जाति का अपना जघन्य कहाँ है, मिथ्या दृष्टि को सर्व संकलेश में, और वो ही समय दृष्टि को कैसा बंधेगा, अधिक बंधेगा, अनंत गुणा अधिक बंधेगा। सभी ये प्रशस्त प्रकृतियां। अब मनुष्य गति के जघन्य के साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी का नियम से बंध करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। और यदि जघन्य अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। जैसा गति का देखा वैसे गत्यानुपूर्वी का आपस में हुआ, इसी प्रकार मनुष्य गत्यानुपूर्वी की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। पंचेंद्रिय जाति दंडक का भंग सामान्य नारकियों के समान है। ये पंचेंद्रिय जाति है, औदारिक शरीर अंगोपांग है, ये सब जो हमने गिनाए थे प्रशस्त प्रकृतियां जो अति संकलेश में जघन्य बनती है, उसके साथ वो जघन्य बन सकते हैं। क्या कहा, तीरंज गति बन देगी, वो कैसी बन देगी, अनंत गुणाधिक सम्यक के सम्मुख। देखो समझ में है ना, यहाँ पर कैसे सर्व संकलेश में अनंत गुणाधिक बंधेगी, यानी वहां बंधने वाली जो अप्रशस्त कर्म है वो सारे अनंत गुणाधिक बंधेंगे, सर्व संकलेश वाले है ना। यानी वो सब अनंत गुणा में, हाँ तिरंज गति हुंडक संस्थान और संप्राप्त सुपाटी का सहनन वगैरह सब ले लेना उसमें, अस्थिर आदि छ वही बंधेगी नियम से, और वो अनंत गुना अधिक बंधेगी। अपने 40 पेज पर चल रही बात कहाँ गया, हाँ पंचेंद्रिय जाति दंड का भंग सामान्य नारकियों के समान है जो अभी हमने देख लिया था। अब 41 पृष्ठ पर आना, सम चतुरस्र संस्थान के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव। देखो छह संस्थान का जघन्य मध्यम परिणाम में होता है, इसका भी जघन्य है मध्यम परिणाम में होगा। उसके साथ नियम से बंधने वाली कौन है, मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम वाला है, परंतु कौन सा जीव है तो सातवें नरक का है। अन्यत्र हम मनुष्य गति भी बन सकते, तीरंज गति भी बन सकते कहा होता, अब यहाँ क्या कहेंगे तो तीरंज गति ही बंधेगी क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर तेजस शरीर कारमान शरीर औदारिक अंगोपांग प्रशस्त वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वर्ण चतुष्क तीरंज गत्यानुपूर्वी अगुरु लघु चतुष्क त्रस्त चतुष्क और निर्माण का नियम से बंध करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। देखो ये मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि है, तीरंज गति गत्यानुपूर्वी का जो जघन्य है वो तो सम्यक तो के सन्मुख वाले के होगा, यहाँ वो अनंत गुणा बंधेगा मध्यम परिणाम में, और बाकी पंचेंद्रिय जाति वगैरह जो प्रशस्त प्रकृतियां है वो सर्व संकलेश में जघन्य होती है, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। अब छह सहनन एक समचतुर संस्थान के साथ उसका जघन्य हो रहा है, वहां छह सहनन बन सकते उसमें इसे कोई भी एक। दो विहाय गति स्थिर आदि छह युगल का कदाचित बंद करता है, पर ये भी जघन्य उनका स्वामी कौन है, मध्यम परिणाम वाला, तो इनका जघन्य भी हो सकता है जघन्य भी, इसलिए कदाचित लिया क्योंकि कोई आयदर और बंधेगी ना इसमें से, इसलिए कदाचित बंद करता है। किंतु यह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। उद्योत का कदाचित बंद करता है क्योंकि तीरंज गति बन रही है ना यहाँ पर, मिथ्या दृष्टि है तो उद्योत बंधेगा, कदाचित बन सकता है, जो अनंत गुणा अधिक होता है। क्यों, क्योंकि उद्योत का जगन सर्व संकलेश में जगन्य, उद्योतबंती नर गति के सॉरी तिरंज गति के साथ इसी प्रकार यानी जो अभी हमने समचतुर संस्थान के साथ सन्निकर्ष लगाया ऐसा ही सन्निकर्ष पांच संस्थान यानी समचतुर छोड़कर बाकी छह सनन उसमें से एक एक को रखना और उसके साथ ऐसा ही सन्निकर्ष लगाना दो विहाय गति और मध्य के तीन युगलों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। मध्य के तीन युगलों की मुख्यता से यानी कौन सा सुभग दुर्भग आदे अनादे और सुस्वर दुस्वर ये मध्य के तीन युगल हो गए। सुभग या दुर्भग आदे या अनादेय सुस्वर या दुस्वर क्योंकि ये भी फिर से क्या मध्यम परिणाम में जघन्य है वो कौन करता है मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम वाला करता है उन किसके साथ नियम से इनका सन्निकर्ष ऐसा ही समझना ये कह रहे आप नहीं समझे इसका अर्थ। देखो जैसे हमने समचतुर संस्थान के साथ लगाया अभी सुभग का जघन्य करने वाला सुभग का उत्कृष्ट तो समय दृष्टि करेगा उसका जगह सातवें नरक में देख रहे सातवें नरक वाला सुभग या दुर्भग का जघन्य कर रहा है वो मध्यम परिणाम वाला है वहां क्या ऊपर देखो अभी उसके साथ तिर्यंच गति नियम से बंधेगी वो अनंत गुणा बंधेगी पंचेंद्रिय जाति वगैरह ये जब प्रशस्त प्रकृतियां वो भी अनंत गुणा बंधेगी उसके साथ क्या बंधेगा तो सुभग के साथ छह सहनन में कोई भी बंधेगा छह संस्थान में से कुछ भी बंधेगा दो विहाय गति में से कुछ भी बंधेगा तो वो कैसे बंधेगे तो जघन्य भी और अजघन्य भी बंधेगे ये उसका अर्थ होता है। अब तीन युगलों की बात यहां बता दी अब स्थिर प्रकृति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये मुझे बताओ। देखो मध्यम परिणाम में बनते पर मध्यम ये सुभग दुर्भग जो दुर्भग अनादे और दुस्वर का तो मिथ्या दृष्टि करेगा और सुभग आदे उसका भी मिथ्या दृष्टि करेगा परंतु अभी स्थिर अस्थिर का मध्यम परिणाम मिथ्या दृष्टि को भी होगा समय दृष्टि को भी होगा। अब वो जो हमने ऊपर बाकी बाके देखे थे मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि जिसको बांधता है उसके लिए तो केवल तिर्यंच गति को लिया था अब समय दृष्टि भी जिसको नियम बांधता है ये समय दृष्टि को जो बांधती बनती है ऑप्शनल वाली वो समय दृष्टि उसका जघन्य करेगा मध्यम परिणाम में तो यहाँ क्या बंधेगी मिथ्या दृष्टि भी है समय दृष्टि भी है तो तिर्यंच गति भी बन सकती है मनुष्य गति भी बन सकती है ख्याल में आई ना बात। देखो फिर पढ़ती हूँ मैं इसको स्थिर प्रकृति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तिर्यंच गति मनुष्य गति क्योंकि स्थिर का जघन्य जो है वो तो मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि दोनों ही कर सकते हैं यानी स्थिरादि तीन युगल का जो है ये मध्यम परिणाम वाला दोनों ही है सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि इसलिए उसको अलग से बताया तीन युगलों को। अब स्थिर का कर रहा है तो यह तिर्यंच गति भी बन सकती है मनुष्य गति भी बन सकती है तिर्यंच गति तो सम्यक के सन्मुख जघन्य है और मध्यम परिणाम में वो अनंत गुणा बन देगी मनुष्य गति का जघन्य सातवें नरक में मिथ्यात्व के सन्मुख वाला करेगा और ये मध्यम परिणाम वाला है तो वो भी अनंत गुणा बंधेगी दो अनुपूर्वी जो गति बनती वो अनुपूर्वी बंधेगी उद्योत तिर्यंच गति के साथ बंधेगा वो भी अनंत गुणा बंधेगा अधिक क्योंकि ये मध्यम परिणाम में उसका जघन्य हो रहा है यानी मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम तिर्यंच गति अनुपूर्वी और उद्योत का बंद कर सकता है
और सम्य दृष्टि मध्यम परिणाम में स्थिर के साथ मनुष्य गति बांध सकता है, इसलिए इसको ऑप्शनल में लिखा कदाचित में और अनंत गुना होता है। पंचेंद्रिय जाति दंडक का नियम से बंध करता है जो अनंत गुना अधिक होता है, क्योंकि हमने देखा ना ऊपर पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर वगैरह वगैरह तो नियम से बंधने वाली है और वो सर्वसंक्लेश में जघन्य होती है और यहां मध्यम परिणाम में वो अनंत गुना अधिक होगी। छह संस्थान, छह सहनन, दो विहाय गति और सुभग आदि पांच युगल का कदाचित बंद करता है। पांच युगल कौन से लिए, किसको छोड़ा अश्विन भाई? लक्ष्मी बोलो बोलो, किसको छोड़ा? स्वर को छोड़ा? कल यही बात पूछी थी। स्थिर के साथ सन्निकर्ष लगा रहे तो अन्य पांच ही रहेगी ना, स्थिर बंद रहा है तो अस्थिर बंद ही नहीं रहा और बाकी पांच युगल बंधेंगे उसमें से कोई भी बंधेगा उसको भी कदाचित में रखना है। किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पति तुरुद्धि रूप होता है। हाँ, ये बात है कि अगर सम्य दृष्टि मध्यम परिणाम में स्थिर का जघन्य कर रहा है वो सुभग सुस्वर और आदे ही बांधेगा। पर यहाँ हम कौन बांधता है उसकी बात नहीं, सातवें नरक का नारकी ही बांधे, बस इतना ही लेना है। तो जगन्य भी और अजगन्य भी, यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है वो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार अस्थिर शुभ अशुभ यश कीर्ति और अयश कीर्ति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। जैसे स्थिर में देखा हमने वो, वैसे इन सभी का, ये तीन जो युगल है उनमें से प्रत्येक का जघन्य मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है समय मध्यम परिणाम में, और ऐसा ही ऑप्शन वहां पर भी होगा। ये सब बात हो गई नारकियों की और सातवें नरक के नारकियों की, यहां तक। अब तीर्यंचों में देखेंगे हम। तीर्यंचों में छह कर्मों का भंग सामान्य नारकियों के समान है, यानी ज्ञानावरण अंतरा है और तीर्यंचों में वही सभी दर्शनावरण में तीन की बात अलग होगी, छह की बात अलग होगी, वो यहाँ पर भी लागू होगा। वहां तो चौथे गुण स्थान तक है, यहाँ तो पांचवे तक है, इसलिए मोहनी में भी डिफरेंस पड़ेगा। मोहनी और नाम कर्म की बात अलग से बताएंगे अभी। मोहनीय कर्म का भंग ओघ के समान है, इतनी विशेषता है कि, यानी मोहनीय में क्या है, मिथ्यात्व का है, आनंदानुबंधी का, जघन्य कब होता है तो सम्यक के सन्मुख, यानी पांचवे के सन्मुख कहेंगे हम। परंतु वहां बंधने वाली जो है मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी जघन्य अजघन्य बंधेगी, पर उसके साथ अन्य बारह कषाय है, भय जुगुप्सा है, पुरुष वेद है, आसिरति, वो कैसे बंधेगी? अनंत गुणाधिक बंधेगी, वो वैसा ही कथन होगा। अप्रत्याखंडावरण का जघन्य कब होगा? चौथे से पांचवे में जाने वाला, वहां जो अन्य जो बनती है आठ कषाय वो अनंत गुना अधिक बंधेगी, जो पांचवे में जगन्य होती है वो यहाँ अनंत गुना अधिक बंधेगी। पुरुष वेद हास्यरति के लिए ऐसा ही लेना है। बाकी जो हमने ओग में देखा ना, स्त्री वेद का जगन्य, नपुसक वेद का जगन्य, वो सब वैसा लागू हो जाता है। विशेषता क्या होगी? प्रत्याख्यानावरण क्रोध के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव सात कषाय, जहां प्रत्याख्यानावरण का जगन्य हो रहा है कहाँ होगा? पांचवे गुणस्थान वाला सर्व विशुद्ध वाला लेना है। तो वहां तो पांचों गुणस्थान में आठ कषाय बंद रहे, तो एक के साथ अन्य सात को लेना, और पांच नौ कषाय का नियम से बंद करता है, उसके भी जघन्य का वही स्वामी है, इसलिए वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। पांचों गुणस्थान वाला है इसलिए वो पुरुष वेद हास्यरति और भयजुगुप्सा को लेना, तो जघन्य भी और अजघन्य भी। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियों का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। इनका यानी ये प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन चार चार है और पांच नौ कषाय। किंतु इनमें से किसी एक के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष प्रकृतियों का नियम से बंद करता है, जो जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि जगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब अरति को छोड़ा था, अरति के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ये भी सम्य दृष्टि है, उसका जगन्य कर रहा है। आठ कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा का नियम से बंद करता है, क्योंकि अरति शोक में से अरति के साथ लगा रहे हैं, जहां अरति बनती है वहां शोक बंधेगा, परंतु वो जगन्य अजगन्य दोनों बन सकता है। और बाकी कैसे बंधेगी? अनंत गुणादि, क्योंकि अरति का जगन्य सर्व विशुद्ध वाले नहीं, तत्प्रायोग विशुद्ध वाले के होगा। शोक का नियम से बंद करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। ये समझ में आती है बात? इसी प्रकार शोक की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, जैसे अरति का स्वामी वैसा ही शोक का है। सर्व विशुद्ध वाला, पांचवे गुणस्थान वाला। ये मोहनीय का हो गया। अब नाम कर्म क्या? तीर्यंचों में नाम कर्म, क्योंकि हमारी मार्गणा भी तीर्यंचों की चल रही है। अब चार गति, चार जाति, चार जाति में एक इंद्रियादि लेना, ये सब मध्यम परिणाम में जगन्य बंधेगी। देखो ओग में जब कहते हैं और नारकियों में, तीर्यंच गति का जगन्य सातवें नरक में सम्यक्तु के सन्मुख होता है। अगर उसकी बात छोड़ो तो मध्यम परिणाम में हो, चारों गतियों का मध्यम परिणाम में। हाँ, चार गति, चार जाति, छह संस्थान, छह सहनन, चार अनुपूर्वी, दो विहाय गति, स्थावर आदि चार और स्थिर आदि छह युगल का भंग ओघ के समान है। ये तीर्यंच गति का जगन्य कौन करेगा? अग्नि का एक वायु का एक करेंगे? नहीं, मध्यम परिणाम वाला लेना है ना। एक मिनट जरा निकालो ओघ ने, पर वो के समान ही बताया। ना ना ना, पर वो के समान, वो के ओग में तो नरक को लेते हैं, तीर्यंचों में अग्नि का एक वायु को लेना पड़ेगा। ओग में अभी हमने कौन सा पेज अपने बताया था? 29 कुछ था ना, 30 नंबर होगा। तीर्यंच का जगन्य करने वाला 29 में लास्ट, पंचेंद्रिय जाति औदारिक तेजस शरीर कारमान शरीर, क्योंकि अग्नि का एक वायु का एक सर्व विशुद्ध में यही बांध करेगा, इसलिए वो के समान होगा। पेज नंबर 29। यानी वहां तीर्यंच गति के लिए वो पंचेंद्रिय जाति वगैरह नियम से बंधेगी, जो अनंत गुण वृद्धि रूप होगी, क्योंकि उसका सर्व विशुद्ध अग्नि का एक वायु का एक को लेना तीर्यंचों में। और वहां ये कैसे बंधेगी? सर्व विशुद्ध वाले की ये प्रशस्त प्रकृति अनंत गुणा अधिक बंधेगी। उद्योत भी कदाचित बंधेगी, अनंत गुणा अधिक बंधेगी। और यहां बंधने वाली जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, वो भी अनंत गुणा अधिक बंधेगी, क्योंकि अप्रशस्त वर्णादि और उपघात का जगन्य कौन करेगा? तीर्यंचों में पांचवें गुणस्थान वाला तीर्यंच। देखो मैं 42 पेज पर हूँ और रेफरेंस के लिए मैंने 29 पेज की बात देखी, तिर्यंज गति के लिए पेज 29 बताया था मैंने। चारों गतियों को मध्यम परिणाम में नहीं लेना है, वहां तिर्यंज गति के ओग में नर गति स्वामी था, यानी नर गति का सातवें नरक का जो स्वामी था, और तिर्यंचों में तिर्यंज गति का जघन्य करने वाले अग्नि का एक वायु का एक सर्वविशुद्ध हो गए, तो उसके साथ पंचेंद्रीय जाति ही बंधेगी। हाँ, तो वो सारी प्रशस्त प्रकृति अनंत गुण अधिक बंधेगी, क्योंकि उसका अपना जघन्य कौन करेंगे, पंचेंद्रिय सर्व संकलेश वाले, और इनका तिर्यंज गति का जघन्य कौन रहे, सर्व विशुद्ध अग्नि का एक वाले। बाकी तीन गतियों का जो है ना, मनुष्य गति, नरक गति और देव गति मध्यम परिणाम में, पर उसके साथ कौन कौन सी बंधेगी ऐसा हम विचार करेंगे, तो मनुष्य गति का जघन्य है तो उसके साथ ये सहनन वगैरह वो तो जघन्य बन सकते हैं, परंतु मनुष्य गति का जघन्य है तो पंचेंद्रिय जाति नियम से बंधेगी। मनुष्य गति का जघन्य तिर्यंचों में कौन करेगा, गति का जघन्य तिर्यंचों में कौन करेगा, पंचेंद्रिय करेंगे कि एकेंद्रिय करेंगे कि कौन करेंगे? हाँ, कोई भी कर सकते, कोई भी कर सकते, हाँ सभी कर सकते। हाँ, तो उसके साथ ये सहनन वगैरह वगैरह तो जघन्य बन सकते, पर मनुष्य गति का मध्यम परिणाम में जघन्य है, वहां पर पंचेंद्रिय जाति वगैरह नियम से बंधेगी। हाँ, वो कैसे बंधेगी, अनंत गुणादि। तो मेरा सवाल है, पर्याप्त बंधेगी क्या अपर्याप्त बंधेगा? दोनों बंधेगी। पर्याप्त बंधेगी तो अनंत गुणा, क्योंकि प्रशस्त प्रकृति है, और अपर्याप्त बंधेगी तो वो जघन्य भी बन सकते। निकालो मनुष्य गति का जघन्य देख लो, क्योंकि हमने नरक में अपर्याप्त को छोड़कर बात की थी, है ना? पेज नंबर 30 रेफरेंस देख रहे हमने, उपका मिला ऊपर से सातवीं लाइन है, मनुष्य गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव। वहां तो ओग में स्वामी तो चारों गति का था, यहाँ तो हमको तो तिर्यंचों में देखना है, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमन शरीर, ये सब जो प्रशस्त प्रकृति है ना, त्रज मादर पर्याप्त लिया, यहाँ पर्याप्त को छोड़ा है, वो बाद में बताएंगे, ये नियम से बनने वाली सब बताएंगे, वो कैसे बनती है अनंत गुणाधिक, क्योंकि इन सब प्रशस्त प्रकृतियों का जघन्य सर्व संकलेश में होगा। मनुष्य गति के समान मध्यम परिणाम में कौन सी है, 6 संस्थान, 6 सहनन, 2 विहाय गति, अपर्याप्त यहाँ पर लिया है ना, उसका अर्थ अपर्याप्त का जघन्य मध्यम परिणाम में होता है, ये कदाचित वाली है और जघन्य अजघन्य है। मनुष्य गत्यानुपूरी नियम से होगी, जघन्य अजघन्य होगी। अब देखो, परघात, उच्छ्वास और पर्याप्त को भी कदाचित में रखा है, क्योंकि पर्याप्त बंधेगा तो ये दो प्रकृतियां बंधेगी, पर वो कैसी है, सब प्रशस्त है, उनका जघन्य सर्व संकलेश में होगा और मनुष्य गति का जघन्य मध्यम में हो रहा है, इसलिए वो कैसे बन रहे, कदाचित बंधेगी और अनंत गुणा अधिक बंधेगी, ऐसे मनुष्य गत्यानुपूर्वी के। अब देवगति का भी पढ़ लेते हैं, देवगति का जघन्य कर रहा है तो देवगति का जघन्य कौन करेगा, मध्यम परिणाम वाले करेंगे, संगी भी कर सकते, असंगी भी कर सकते, मिथ्या दृष्टि होने चाहिए कि सम्य दृष्टि के अनुभाग अधिक बंधेगा, तभी उसके साथ भी पंचेंद्रिय जाति वगैरह वगैरह अगर बनती वो अनंत गुणा बंधेगी। अब देवगति का पैकेज मालूम है आपको, एक ही संस्थान बंधेगा, समचतुर्थ से बंधेगा, वो भी मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, तो वो कैसे बंधेगा, जघन्य भी और अजघन्य भी, यानी उसके साथ प्रशस्त विहाय गति, सुभग, सुस्वर, आदेय ना, सर्व संकलेश में नहीं बनती है, मध्यम परिणाम में बनती है, नहीं बनती तो उसका जघन्य में जघन्य मध्यम परिणाम में होता है, उसके आगे के संकलेश में वो बंधेगी नहीं,
आपको क्या कहना है?
तो देवगति का उत्कृष्ट विशुद्धि की तरफ जाएगा और नरगति का उत्कृष्ट संकलेश की तरफ जाएगा, ख्याल में है ना बात? सबका जगन्य मिडिल पॉइंट पे है, वो तीरंज गति को छोड़ो, अग्नि कायिक वायु कायिक और सातवें नरक को छोड़कर। हाँ, तो यहाँ जो समचतुर संस्थान ही बनता है, प्रशस्त व्याय गति, सुभग सुस्वर आदि, ये तो नियम से बनती है क्योंकि देवगति के साथ यही बनती है, परंतु इनका अपना जगन्य मध्यम परिणाम में है। हाँ, तो नियम से बनती वो जगन्य भी अजगन्य भी बन देगी। अब कदाचित में किसको लेना, सिर सिर शुभ शुभ यश अयश, तो वो भी जगन्य अजगन्य दोनों बन सकते, कदाचित में जगन्य अजगन्य। अब ये आना अपने पेज पर 42, कहाँ थे हम, 42 पेज पर। तो चार गति की बात हमने देख ली पेज नंबर 30 के आधार से। अब चार जाति में देखना है, एक इंद्रियादि चार जाति है, वो भी मध्यम परिणाम में जगन्य बनती है, पर चार जाति बांधने वाले कौन है? मनुष्य और तिरंज बांधेंगे, पर इन चार जातियों के साथ कौन सी गति बंधेगी? तिरंज गति ही बंधेगी नियम से, वो कैसी बंधेगी? अनंत गुणा, उसका जगन्य अग्नि कायिक को होता है, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। अब ये चार जाति के साथ और क्या क्या बन सकता है? औदारिक शरीर, अंगोपांग, तेजस, कारमान, ये सब बंधेगी ना, वो कैसे बंधेगी? हाँ, वो भी अनंत गुना बंधेगी। नहीं, ब्रह्मुंड संस्थान कैसे बंधेगा? वो जगह क्योंकि छह संस्थान सहनन की बात आती है ना। हाँ, अब ये चार जाति तो द्विंद्रिय जाति के साथ तो असंप्राप्त सुपाटी का सहनन भी लेना पड़ेगा। हाँ, मध्यम परिणाम में इस तरह से सबको सोचना है हमको। अभी द्विंद्रियादि वहां तो स्वर को भी लेना पड़ेगा, एक इंद्रिय के साथ तो पांच ही युगल की बात करेंगे हम, तो ओग के समान है। ये बात 31 पेज पर थी। अब आते आगे बढ़ते, छह संस्थान छह सहनन, हाँ ये तो मध्यम परिणाम में जगन्य बनती है, तो उसके साथ कौन सी गति बंधेगी? मनुष्य गति बंधेगी तो जगन्य भी बन सकती है, तीरंज गति बंधेगी तो अनंत गुना बंधेगी, ख्याल में आते ना कैसे डिराइव करना है, तो उसके अनुसार बाकी प्रकृतियों को हम डिराइव कर सकते हैं। किसमें? तीरंज में चारों गति का बंध है, परंतु छह संस्थान के साथ कौन सा बंध हो सकता है? समचतुर्थ के साथ तो देवगति बन सकती है, यानी समचतुर्थ साथ को तो तीनों गतियां बन सकती है, देवगति, मनुष्य गति, तिरंज गति, उसके साथ वो लगाना, और बाकी जो है वो पंचेंद्रीय जाति के साथ ही बंधेगी। हुंड संस्थान के साथ नरक गति, मनुष्य गति, तिरंज गति हो सकते हैं, परंतु बाकी बीच वाले जो है चार संस्थान सहनन, तिरंज गति, मनुष्य गति दोनों ही बन सकती है। तो तिरंज गति बंधेगी तो अनंत गुणा, मनुष्य गति बंधेगी तो जगन्य भी अजगन्य भी। देखो एक एक को लेते हम, समय चतुर्थ संस्थान के साथ तिरंज भी बन सकती है, देव भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकती है, और हुंडक के साथ देव को छोड़ो। हाँ, और छह संस्थान सहन तो दो गति के लिए कॉमन है सब जगह। हाँ, तो बीच वाले चार जो है मात्र मनुष्य गति, देव तिरंज गति के साथ बंधेगी। तिरंज गति के साथ बंधेगी ऐसा मैं कहना, तिरंज गति के जगन्य के साथ हो बात हो गई, हमने चार गति के साथ उसको देख लिया, अभी हम संस्थान के साथ गति देख रहे हैं, गति के साथ संस्थान नहीं देख रहे, हाँ, तिर्यंच गति के जघन्य जो सर्व विशुद्धि वाला था, अग्नि कायिक वायु कायिक, तो समय चतुर संस्थान वज्रषभ नारा सहनन बांधेगा। हाँ, उसकी बात यहाँ नहीं लेने। समझ में आती है बात ये? अभी सहनन जो है, सहनन के साथ कौन सी गति बंधेगी? मनुष्य तिर्यंच। समझ में आती है बात? हाँ, संस्थानों के साथ तीन गतियां ले सकते हैं, आइदर और जो कुछ है। और बीच वाले चार संस्थानों के साथ वो भी मनुष्य तिर्यंच गति का ही बंद होगा। वज्रवृषभ नारा सहनन का जघन्य मध्यम परिणाम में हो रहा है। हाँ, नेचुरली, क्योंकि मध्यम परिणाम है। तिर्यंच गति का जघन्य सर्व विशुद्ध अग्नि कायिक वायु कायिक के है, वो अनंत गुणाधिक बंधेगी। देखो देखो, आपको निकालना था ना। देखो पेज नंबर 33 निकालो। संस्थान और सहनन का देख लेते जरा। समय चतुर्थ नीचे का पैराग्राफ, समय चतुर्थ संस्थान का जघन्य है, कहाँ है? मध्यम परिणाम में, मिथ्या दृष्टि को। वहां क्या क्या बंधेगा? कदाचित मैं पहले बता रहे, तिर्यंच गति है, औदारिक वैकृत दोनों शरीर लिए, क्योंकि देव गति भी तो बन सकती है ना, इसलिए कदाचित में रखेंगे दो अंगोपांग, तिर्यंच गत्यानुपूरी, और वो बनती है तो उद्योग भी कदाचित बंधेगा जो अनंत गुणाधिक होता है, क्योंकि तिर्यंच गति का ओग में तो सातवें नरक में था, तिर्यंचों में तो अग्नि कायिक को लेना है, इसलिए ऐसा ही कथन होगा। अब मनुष्य गति भी बन सकती है, देव गति भी, क्योंकि समय चतुर्थ संस्थान इन गतियों के साथ भी बन सकता है, और वो दोनों कदाचित में बनेगी, परंतु जघन्य भी बन सकती है, इसलिए मनुष्य गति देव गति ये भी आयदर में रखना। छह सहनन, ये तो मनुष्य गति के साथ ही बंधेगे, दो अनुपूर्वी दो विहाय गति, सिरादि छह युगल का कदाचित बंद करता, ये सारे मध्यम परिणाम में जघन्य है, तो ये जघन्य भी और अजघन्य भी हो जाएगा। और समय चतुर संस्थान है तो पंचेंद्रीय जाति के साथ ही बंधेगा, फिर वो तेजस कारमान वगैरह वगैरह सब ले लेना, तो जो नियम से अनंत गुण अधिक हो गए। फिर से बताओगे ना? वो तो बता दिया, सबके साथ वैसा ही वो कथन होगा, क्योंकि मध्यम परिणाम में जघन्य, छह संस्थान और छह सहनन मध्यम परिणाम में जघन्य है, और वो सर्व विशुद्ध वाले को जघन्य था, वो यहाँ अनंत गुणा बंधेगी, परंतु उनके साथ जिसके साथ जो गति बनती है, मनुष्य गति बनती है, तो जघन्य, जहाँ जिस संस्थान के साथ देव गति बनती है, वो भी जघन्य अजघन्य बंधेगी। हाँ, स्वामी की बात था। अभी आना अपने पेज पर, हम पढ़ रहे थे 43 पेज पर ना, कहाँ 42 में थे। हाँ, चार गति चार जाति देखा, छह संस्थान सोहनन देखा, अनुपूर्वी तो गति के समान देख लिया, दो विहाय गति मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, तो मध्यम परिणाम के साथ तिर्यंच गति बंधेगी, मनुष्य गति बंधेगी, और दोनों विहाय गति का जघन्य है ना। हाँ, तो उसमें तो चारों गति का अलग अलग सोचना पड़ेगा उसमें, क्योंकि अप्रशस्त विहाय गति के साथ तो उसके जघन्य के साथ नरक गति भी तो बन सकती है। वो भी मध्यम परिणाम में बनती है ना जघन्य, तो वो भी जघन्य अजघन्य आदि हो जाएगा। स्थावर आदि चार, स्थावर आदि चार चार का है, मध्यम परिणाम में जघन्य होगा, और स्थिर आदि छह युगल का भंग ओघ के समान है। ये सारे ही प्रकृतियां मध्यम परिणाम में जघन्य होती है। पर उसके साथ कहाँ कौन सी गति वगैरह लेना वो हम विचार करके ले लेते हैं। हाँ हाँ, तिरंज गति अनंत गुना ही बंधेगी। पंचेंद्रिय जाति के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब ये सर्वसंक्लिष्ट वाला है। और तिरंज सर्वसंक्लिष्ट में क्या बांधेगा, तो नरक गति ही बांधेगा। तो उसके साथ बनने वाली सारी अप्रशस्त प्रकृतियां अनंत गुना अधिक बनेगी, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति प्रशस्त है और बाकी सब अप्रशस्त है। उनका उत्कृष्ट होगा यहाँ, यहाँ उत्कृष्ट की बात नहीं, उसको हम अजघन्य कह रहे हैं। तो पंचेंद्रिय जाति के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव नरक गति, देखो ये नियम से बंधेगी ना, नरक गति के साथ बनने वाली सारी अभी गिना, हुंड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, नरक गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहाय गति, अस्थिर आदि छह का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुणा अधिक होता है। क्योंकि इसमें से जो संस्थान है, वर्ण चतुष्क है, विहाय गति है, अस्थिर आदि, वो मध्यम परिणाम में जघन्य है, और यहाँ सर्व संक्लेश में वो अनंत गुणा अधिक हो गए। और उपघात और वर्ण चतुष्क का जघन्य जो है वो तो पंचम गुण स्थान वर्ती तीरें जघन्य करेगा, यहाँ वो अनंत गुण अधिक है। ख्याल में आई बात? अब नरक गति के साथ प्रशस्त प्रकृतियां कौन सी बन रही है, वैक्रिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, वैक्रिक अंगोपा, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुर लघु त्रिक, त्रस चतुष्क और निर्माण का नियम से बंद करता है, किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद कर सकता है। क्योंकि नरक गति बन रही है, पंचेंद्रिय जाति का जगन्य है ना, तो नरक गति बन रही है, तो हाँ इनका ये प्रशस्त प्रकृतियां जो उसके साथ है, जैसे पंचेंद्रिय जाति भी प्रशस्त है और ये भी प्रशस्त है, तो ये जगन्य भी और अजगन्य भी, अनंत गुणा नहीं लेना, जगन्य अजगन्य लेना। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, इनका यानी ये प्रशस्त प्रकृतियों का, पंचेंद्रिय जाति का आपस में, किंतु वह उसी प्रकार जानना चाहिए जिस प्रकार पंचेंद्रिय जाति की मुख्यता से कहा है। ये प्रशस्तों का ग्रुप अलग लेना। अब तिर्यंचों में औदारिक शरीर के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, औदारिक शरीर भी कैसी प्रकृति है, प्रशस्त है, तो प्रशस्त का संक्लेश में जगन्य होता है, पर सर्व संक्लेश में तिर्यंच तो नरक गति बांध रहे, तो औदारिक शरीर का जगन्य कब होगा, तत्प्रायोग में, जब वो तिर्यंच गति का बंद कर रहा है तब। ख्याल में ना, मिथ्या दृष्टि तत्प्रायोग संक्लिष्ट वाला। तो नरक उत्कृष्ट संक्लेश में नरक गति बांध रहा है, उससे थोड़ा कम संक्लेश है तत्प्रायोग, तो कौन सी गति बांधेगा, तो तिर्यंच गति का ही बंद करेगा। तो हम पढ़ते हैं कि अभी औदारिक शरीर के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तिर्यंच गति, अब तिर्यंच जब तिर्यंच गति का उत्कृष्ट कर रहे हैं, देखो देव अगर तिर्यंच गति का उत्कृष्ट करते हैं तो नीचे के देव एकेंद्रीय जाति का, ऊपर के देव पंचेंद्रीय जाति का करते हैं, समझ में आती है बात। पर यहाँ तिर्यंच और मनुष्य जब जघन्य, सॉरी तिर्यंच गति का, तिर्यंच गति का उत्कृष्ट कर रहे हैं, औदारिक शरीर का जघन्य कर रहे, नहीं समझे, देवनार की तिर्यंच गति का उत्कृष्ट कर रहे हैं तो औदारिक शरीर का जघन्य कर रहे, औदारिक शरीर के साथ हमको लगाना है, तो औदारिक शरीर का जघन्य कर रहे तो तिर्यंच गति बांध रहे, पर वो उत्कृष्ट बांध रहे, तो उसके साथ एकेंद्रीय जाति भी बन सकती, पंचेंद्रीय जाति भी बन सकती उनके लिए। पर मनुष्य और तिर्यंच औदारिक शरीर का जघन्य करे ने तत्प्रायोग संक्लिष्ट वाला है, तो वहां तिर्यंच गति बनती है, यानी सर्व संक्लिष्ट वाला, यानी तत्प्रायोग संक्लिष्ट वाला ले जो तिर्यंच गति का उत्कृष्ट कर रहा है। तो मेरा ये सवाल है, तिर्यंच जीव जब तिर्यंच गति का उत्कृष्ट कर रहे हैं, जरा शांति रखना, सब विचार करना, तो कौन सा बंध कर रहे हैं, कौन सा जो सुप, हम कहेंगे नाम कर्म का कौन सा पैकेज बांध रहे हैं, फिर से सुनना। आपको बोला था कुछ बोलना नहीं, सब विचार करना जिसको पूछेंगे। हाँ, 23 का पैकेज है ना, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त वाला, उसका बंद करेंगे। इसीलिए अभी यहाँ देखेंगे हम औदारिक शरीर का जघन्य कर रहे हैं, वो तत्प्रायोगिक संकलेश वाला तीर्यंच है, वो नियम से क्या बांधेगा तो तीर्यंच गति, एक इंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, पुंड संस्थान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण, क्योंकि ये दोनों ही ध्रुवबंदी है, तीर्यंच गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, स्थावर आदि चार, यानी स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, लिया ना ये, अस्थिर आदि पांच, क्योंकि एक इंद्रिय का बंध है तो दूसरा बंधेगा नहीं, और उसमें से सारी अप्रशस्त प्रकृति वाली, और निर्माण का नियम से बंध करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। देखो इसमें से कुछ प्रशस्त प्रकृतियां ली है और कुछ अप्रशस्त ली है, जैसे तेजस कारमान वगैरह वगैरह का, तेजस कारमान हुंड संस्थान अप्रशस्त वर्ण चतुष्क उपघात, ये अप्रशस्त प्रकृतियां है। सॉरी मुझे ये हुंड संस्थान अप्रशस्त है, वर्ण चतुष्क, अभी उसका हम इसमें से तेजस कारमान का लेते हैं, इनका जघन्य कब बंधेगा, नरगति के साथ, तीर्यंच बांध रहा है ना सर्व संकलेश वाला, कुंड संस्थान कैसा बंधेगा उसके साथ, तो उत्कृष्ट बंधेगा, सर्व संकलेश वाला है ना, उसका अपना जघन्य कहाँ है, मध्यम परिणाम में, तो यहाँ कैसे बंधेगी वो, अनंत गुणाधिक। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क का तो पांचवें गुणस्थान वाला जघन्य बांधेगा, यहाँ वो कैसा बंधेगा, अनंत गुणाधिक। तीर्यंच गति की तो बात हमने देखी थी, सर्व विशुद्ध अग्निवायु का जघन्य, यहाँ वो अनंत गुणाधिक होगा। ये सभी प्रकृतियों के बारे हमको सोचना है। क्योंकि औदारिक के जघन्य के साथ हम बात करें, यानी जैसे यहाँ तीर्यंच गति का उत्कृष्ट हो रहा है तीर्यंचों के लिए, तो स्थावर आदि चार का भी उनके लिए उत्कृष्ट हो रहा है ना, यानी उत्कृष्ट हो रहे ना, तो जघन्य से अनंत गुना अधिक है, इस तरह से अपने अपने जघन्य से कंपेयर करना है। यहां तक बात समझ में आई? तो औदारिक अंगोपांग का जघन्य कर रहा है, तो अंगोपांग कब से बनती है हमको, द्विंद्रिय से, और औदारिक अंगोपांग प्रशस्त प्रकृति है, उसका जघन्य करना है, यानी संकलेश, औदारिक शरीर के संकलेश है, ये संकलेश थोड़ा सा कम है, यानी यहां से द्विंद्रिय जाति बांधना शुरू किया उसने, अंगोपांग बांधता है ना, तो द्विंद्रिय जाति बंधेगी, तो औदारिक अंगोपांग का जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जी। अब तीर्यंच गति तो बनती है, और द्विंद्रिय जाति बंधेगी यहां पर, क्योंकि तीन्द्रिय जाति के साथ औदारिक अंगोपांग जरा ज्यादा बंधेगा अनुभाग, थोड़ी विशुद्धि ज्यादा में तीन्द्रिय जाति बंधेगी, चतुरिंद्रिय बंधेगी, पंचेन्द्रिय, हमको मिनिमम चाहिए, औदारिक अंगोपांग बंधे ऐसा उसका भाव है, उसका परिणाम है, तो तीर्यंच गति द्विंद्रिय जाति। अब ये जो द्विंद्रिय जाति बांधने में भी जो संकलेश है, द्विंद्रिय में ज्यादा से ज्यादा संकलेश है, तो वहां अपर्याप्त बंधेगी कि पर्याप्त बंधेगी, द्विंद्रिय का, देखो फिर से औदारिक का जघन्य हो रहा है, द्विंद्रिय जाति का उत्कृष्ट हो रहा है, औदारिक अंगोपांग का जघन्य है, उसके साथ द्विंद्रिय जो जाति बन रही है इनके लिए उत्कृष्ट है, वो अप्रशस्त प्रकृति है, वो इसके लिए उत्कृष्ट बन रही है, तो जैसे द्विंद्रिय जाति बनती है उत्कृष्ट, तो वहां कौन सा बंध होगा, पर्याप्त का कि अपर्याप्त का, अपर्याप्त अप्रशस्त को लेना है वहां पर, तो द्विंद्रिय अपर्याप्त का बंध होगा यहाँ पर, तो अपर्याप्त के साथ बनने वाली बाकी प्रकृतियां ले लेंगे हम नियम में। देखो फिर से सोचते हैं, औदारिक अंगोपांग का जघन्य हो रहा है, हाँ ऊपर का जो तत्प्रायोग संकलेश विशुद्ध नहीं संकलेश, पर औदारिक शरीर के संकलेश से और संकलेश कम है, हाँ क्योंकि उतनी संकलेश थे तो एक इंद्रिय जाति बांध रहा था। अब द्विंद्रिय बांधने योग्य तो उसके संकलेश कम है ना। तो औदारिक अंगोपांग का जघन्य अनुभाग बंद कर। देखो यहाँ औदारिक शरीर बंधेगा कि नहीं बंधेगा, वो कैसे बंधेगा? हाँ, अनंत गुना अधिक बांधेगा। हाँ, क्योंकि उसका जघन्य एक इंद्रिय के साथ था। अब ये परिणाम ऐसे कि द्विंद्रिय जाति बन रही है। देखो फिर से पढ़ती हो, औदारिक अंगोपांग का जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तिर्यंच गति द्विंद्रिय जाति। द्विंद्रिय जाति का उत्कृष्ट है ना, यानी वो जघन्य से अनंत गुना होगा। औदारिक शरीर का भी हमने देखा था, वो भी अनंत गुना होकर बन रहा है। यहाँ पर तेजस शरीर कार्मण शरीर तो नरगति के साथ सर्व संकलेश में जघन्य था, यहाँ वो भी अनंत गुना है। कुंड संस्थान भी नरगति के साथ उत्कृष्ट था और यहाँ तो हाँ अभी सर्व अभी तत्प्राय का संकलेश अभी मध्यम मन जघन्य होता है, यहाँ वो अनंत गुना अधिक होगा। असंप्राप्ता सुरपाठी का सहन, हाँ, और यहाँ वो कैसे बंधेगा? अनंत गुना अधिक। प्रशस्त वर्ण चतुष्क वो सर्व संकलेश में, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क सर्व विशुद्धि में, तीर्यंच गत्यानुपूर्वी वो गति के समान, वो तो अग्नि का एक वायु का एक को जघन्य है, यहाँ वो अनंत गुना है। अगुरु लघु उपघात, अगुरु लघु नरक गति के साथ उपघात पंचम गुण स्थान वर्ती वाले को। त्रस और बादर भी नरक गति के साथ उत्कृष्ट बनती है और यहाँ पर भी वो तो इनका जघन्य कहाँ होगा? मध्यम परिणाम में, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक बन रहे हैं। नरगति के साथ सर्व संकलेश में, मध्यम नहीं सर्व संकलेश में, सर्व संकलेश में जघन्य होगा। अपर्याप्त लिया ना यहाँ पर, वो अपर्याप्त एक इंद्रिय अपर्याप्त के साथ वो जघन्य होगा जब सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त बन रहा है। कैसे तो पंचेंद्रिय जो विशुद्धि है और अपर्याप्त अप्रशस्त प्रकृति है, क्यों अपर्याप्त का जघन्य कब होगा? मध्यम परिणाम में होगा। उसका उत्कृष्ट वहां देखा था हमने, एक इंद्रिय के साथ उत्कृष्ट की बात कर रहे थे हम जघन्य के। हाँ, मध्यम परिणाम में, मध्यम में जघन्य होता है और यहाँ वो तत्प्राय का संकलेश है। प्रत्येक का तो निर्गति के साथ उत्कृष्ट हो रहा था, उसका जघन्य तो हाँ संकलेश में उसको जघन्य होगा। अस्थिरादि पांच, क्योंकि हमने वो अपर्याप्त के साथ बन रही ना, इसलिए दुस्वर नहीं बन रहा यहाँ पर। और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुना अधिक होता है, यानी हरेक का जघन्य कहाँ है वो हमको प्रशस्त प्रकृतियां है तो सर्व संकलेश में जघन्य है, कुछ तो मध्यम परिणाम में जघन्य है वो यहाँ अनंत गुना अधिक बंधेगी, और कुछ तो सम्यक दृष्टि को जघन्य है। देखो एक एक प्रकृति इसमें तो बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, सन्निकर्ष में थोड़ा जंग पकड़ा है ना, वो थोड़ा साफ होता है बुद्धि में। आतप के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ये आतप ये प्रशस्त प्रकृति है परंतु एक इंद्रिय के साथ बनती है, तो सर्व संकलिष्ट वाले को ये जघन्य बंधेगी। तो आतप में मैंने ओग की बात बताई, ओग में देव है उसका स्वामी, यहाँ तीर्यंचों में लेना है नेचुरली, जब तीर्यंच गति बन रही है। तो आतप के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, हाँ तत्प्रायोगिक संकलेश लेना, हाँ क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश में तो नरक गति बनती है ना। आत प्रशस्त प्रकृति है, पर एकेंद्रीय जाति के साथ ही बनती है वो, एकेंद्रीय बांधर पर्याप्त के साथ बंधेगी वो। तत्प्रायोगिक संकलेश वाला जो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त बांध रहा था ना, उससे भी संकलेश कम होगा, क्योंकि ये बांधर के साथ बंध रही है, बांधर प्रत्येक के साथ बंध रही है। तो यहाँ तिर्यंज गति, एकेंद्रीय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमन शरीर, कुंड संस्थान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, अगुर लघु चतुष्क, सबको लेना, प्रशस्त प्रशस्त के स्थावर लेना, बादर पर्याप्त प्रत्येक ही हो गई एकेंद्रीय में, और अस्थिर आदि पांच स्वर को छोड़कर, और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। अनंत गुणा भी सोच लो, तिर्यंचों में एकेंद्रीय जाति का उत्कृष्ट करने वाला वो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त के साथ कर रहा है, और यहाँ उससे संकलेश कम है, यानी वो अनंत गुणा अधिक बंधेगी, है ना। एकेंद्रीय जाति भी अनंत गुणा बंधेगी, तिर्यंच गति तो बनती है, औदारिक शरीर का भी हमने ऊपर देखा था, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त के साथ जगन्य बंधेगी, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। इसमें से प्रशस्त प्रकृतियां जो है नरक गति के साथ जगन्य बन रही है सर्व संकलेश में, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक बन रही है। अस्थिर आदि वो मध्यम परिणाम में जगन्य है, और ये तत्प्रायोगिक संकलेश है वो भी यहाँ अनंत गुणा अधिक बंधेगी। इसी सबका जो स्वामी जो देखकर हमने ये देखा कि ये सारी नियम से बनती है और अनंत गुणा अधिक बनती है। इसी प्रकार उद्योत की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, उसके साथ भी उद्योत का जघन्य कर रहे ना, तो ये भी सत्प्रायोगिक संकलेश है। यहाँ आत्म बन रहा था, उसके बदले उद्योत बन रहा है, एकेंद्रीय जाति के साथ ही बन रहा है। उद्योत का बंध तो एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, तीनिंद्रीय, चतुरिंद्रीय, पंचेंद्रीय सभी के साथ हो सकता है, तत्प्रायोगिक होगा। हाँ हाँ, परंतु ये संकलेश थोड़ा कम है, क्योंकि औदारिक शरीर का बंध सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त के साथ हो रहा था, वहां वो मिनिमम था, और यहाँ बांदर पर्याप्त प्रत्येक के साथ हो रहा है। मैंने बोला ना, इसमें बहुत सोचना है। अब उद्योत का बंध भी पंचेंद्रिय से लेकर एकेंद्रिय के साथ कहीं पर भी होता है, पर अधिक से अधिक संकलेश में उसको तो एकेंद्रिय के साथ बंध होगा। तो उद्योत का ऐसा है, अभी 43 पेज पर है। देखो, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क पहले लाइन ना, और उपघात की मुख्यता से सन्निकर्ष ओघ के समान जानना चाहिए। ओघ में तो हम क्षपक के वो जघन्य होता था, अब यह पंचम गुण स्थान वर्ती जघन्य कर रहा है, परंतु हाँ, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क का जघन्य है, संयमा संयम तिर्यंच है, तो नाम कर्म का कौन सा पैकेज होगा, वो देवगति वाला है ना, 28 वाला होगा, तो उसकी मुख्यता से सन्निकर्ष ओघ के समान बता दिया उन्होंने। यानी यहाँ जो देवगति वगैरह बंधेगी, जो मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम वाले को जघन्य बनती, वो कैसे बंधेगी यहाँ, तो समय दृष्टि को तो उत्कृष्ट बंधेगी, तो यहाँ क्या कहेंगे, अनंत गुणाधिक, क्योंकि अप्रशस्त प्रकृतियों का जघन्य हो रहा है, यानी सर्व विशुद्ध संयमा संयमी जीव है, वो देवगति वगैरह जो प्रशस्त प्रकृतियां है उसको अनंत गुणाधिक बांधेगा। केवल अप्रशस्त वर्ण चतुष्क के साथ, यानी अप्रशस्त वर्ण को लेना, वर्ण के साथ अन्य तीन और उपघात, जगन्य भी और अजगन्य भी बन सकती, इस तरह से लेना। अब यहाँ जो युगल है ना, उसमें से देव गति बन रही है ना, तो सुभग, सुस्वर और आदेय का ही बंध होगा, और वो अनंत गुणा अधिक होगा, क्योंकि उसका जगन्य मिथ्या दृष्टि के होता है। बाकी स्थिर, अस्थिर वगैरह वगैरह मध्यम परिणाम में जगन्य है, और ये कौन सा जीव है, सर्व विशुद्ध, वो भी अनंत गुणा बंधेगी। स्थिरादि, स्थिरादि तीन बंधेगी, हाँ वो तो सारे ही अनंत गुणा अधिक, स्थिरादि छो अनंत गुणा अधिक बंधेगे। इसके मुख्यतः से सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसी प्रकार अर्थात सामान्य तिर्यंज के समान पंचेंद्रिय तिर्यंज त्रिक के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। इनमें तिर्यंज गति और तिर्यंज गत्यानुपूर्वी की परिगणना परिवर्तमान प्रकृतियों में करनी चाहिए। क्योंकि जब हम पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक कहते हैं तो उसमें अग्नि का एक वायु का एक नहीं रहे, तो उनके लिए तिर्यंच गति का जघन्य मध्यम परिणाम में हो, क्योंकि वो ऐसे मार्ग ने जहाँ सातवां नरक भी नहीं है और अग्नि वायु भी नहीं है, वहां तो रेगुलर मध्यम परिणाम में उसका जघन्य होगा। तो जो हमने संस्थान सहनन वगैरह के साथ तिर्यंच गति को भी लेना है यहाँ पर, वहां हम क्या देखते थे, तिर्यंच गति को अनंत गुणा कहते थे, यहाँ उसको जघन्य भी और अजघन्य भी लेना है, यानी मनुष्य गति के साथ उसको भी रखना है। ये तीन लाइन पढ़ लेते हैं अपर्याप्तों की। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में पांच कर्मों का भंग नारकियों के समान है। नारकी में क्या है, दर्शनावरण में भी भेद पड़े थे, तीन और छह का ग्रुप बनाया था, यहाँ सारी मिथ्या दृष्टि है, इसलिए दर्शनावरण को भी छोड़ो, मोहनियों को भी छोड़ो और नाम को भी छोड़ो, नारकियों के समान है। निद्रा निद्रा के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव आठ दर्शनावरण का नियम से बंद करता है, क्योंकि नौ के नौ बनती है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में सर्व विशुद्ध जीव लिया है, क्योंकि अप्रशस्त प्रकृति है, उसका जघन्य हो रहा है। हाँ, क्योंकि नारकियों में तो तीन का बंध सम्यक के सन्मुख है, हाँ उसकी अपेक्षा। पांच कर्म ने ज्ञानावरण लिया, अंतराय लिया, और बाकी वेदनी एक ही बनती है, गोत्र एक ही बनता है, आयु एक ही बनती है, ये पांच और ये तीन आठ है ना, तो दर्शनावरण की बात हो गई। आठ का जघन्य भी अनुभाग होता है बंद और अजघन्य भी होता है, यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार इन सब का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, जो उसी प्रकार होता है जैसा निद्रा निद्रा की मुख्यता से कहा है। अब यही रुकते हैं, ये पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त की मार्गणा चलेगी, अभी दर्शनावरण देखा, कल मोहनीय से शुरू करेंगे, या अपर्याप्त कौन से दोबारा पढ़ेंगे, क्या बात है। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।